और आपकी क्लास चल रहा था 5/11/1966 दूसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। जो खुद ही पूज्य थे वो द्वापर में कैसे पुजारी बन गए? लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसमें फिर वो ही राजा रानी बिगड़ताज। वो बिगड़ताज अर्थात लाइट के ताज के मत्था टेकते हैं। कौन सी नारायण की बात है? क्योंकि सतयुग में जो भी 8 गद्दियां होती हैं वो सब उतरती कला वाली। और उन उतरती कला वाली 8 गद्दियों के जो मालिक होते हैं उनका रचयिता संगम युग में है। जिसकी पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी संग सतयुग में चलती है। संगम में वो ही नर से नारायण बनते हैं। वो किसकी पूजा करते होंगे? उनसे ऊंचा तो कोई नारायण है ही नहीं। तो सतयुग में उनकी जो पीढ़ियां चलती हैं उन पीढ़ियों में काबिज होने वाले नारायण द्वापर में आकर के पूजा करते हैं। सतयुग का फर्स्ट नारायण अर्थात पहला राधा कृष्ण वो पहले पहले पूजा करते हैं। तो सोचना चाहिए कि नई दुनिया की स्थापना करने की जिम्मेवारी किसने उठाई पहले पहले? जिम्मेवारी का ताज कहा जाता है। जो संगम युग में जितनी ही जिम्मेवारी उठाते हैं उतना ही उनको जिम्मेवारी का ताज अर्थात स्थूल ताज भी मिलता है और लाइट का ताज भी मिलता है। लाइट अर्थात ज्ञान की लाइट जरूर संगम युग में धारण की है। ये बड़े से बड़ी समझानी है। कि कौन राजा है द्वापर में माथा टेक होते हैं, जिनको लाइट का ताज नहीं होता है। ज्ञान की लाइट कहो, पवित्रता की लाइट कहो, क्योंकि ये ज्ञान की लाइट परम पवित्र एवर प्योर सुप्रीम सोल बाप से मिलती है। जो सुप्रीम सोल सदा काल के लिए पवित्र है, पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, तो भी परम पवित्र है। अपवित्रता का संकल्प मात्र भी नहीं आता। वो आत्माओं का बाप है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए त्रिकालदर्शी है, तीनों काल के सत्य को जानने वाला है। ज्ञान माना ही सच्चाई, जानकारी सच्चाई की जानकारी। वो जानकारी सदा काल के लिए एक परम पवित्र परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं है, उसी के पास है। इसलिए त्रिकालदर्शी है। परंतु वो कहता है ब्रह्मा की तंसी कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ, परंतु मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे बनते हो। मास्टर उन्हें कहा जाता है जो प्रैक्टिकल करके दिखावे। तो जो ऊंचे से ऊंचा बाप है, जिसके पास ज्ञान का खूट भंडार है, ऐसा खूट भंडार जिसमें से सारा ही भंडार निकाल लिया जाए तो भी खूटने वाला नहीं, संपूर्ण का संपूर्ण बचता है। जो भी आत्माएं हैं उन आत्मा रूपी पात्रधारियों में रंगमंच पर पार्ट बजाने वालों में जो पार्टधारी بڑے سے بڑا پارٹ بجاتا ہے. مکھیہ ایکٹر ہے جسے ہیرو کہا جاتا ہے. وہ منشیہ سرشتی کا ہیرو منشیہ سرشتی روپی جھاڑ کا بیج ہے. اس منشیہ سرشتی کے جھاڑ کے بیج میں اس بیج روپ آتما میں پرم پتا پرماتما شیوا پہلے پہلے پرویش کرتی ہے. جو کہتے ہیں کہ میں جس تن میں بھی آتا ہوں اس کا نام برہما رکھتا ہوں, تو وہ ہوا پرم برہما. کیونکہ برہما نامداری تو بہت ہیں, چترمکھی برہما گایا ہوا ہے, پنچمکھی برہما گایا ہوا ہے, گاتے بھی ہیں گرور برہما گرور وشنو گرور دیو مہیشور گرو ساکشات پرم برہما تسمہ سی گروے نمہ. ارتھات سبھی برہما نامداریوں کو نمن نہیں کرتا ہوں, میرا تو ایک شیو بابا دوسرا نہ کوئی. بابا کہا ہی تب جاتا ہے جب وہ نراکار سپریم سول باپ ساکار شریر میں پرویش کرتا ہے. ساکار اور نراکار کی مل کو بابا کہا جاتا ہے. گرینڈ فادر کو بھی بابا کہا جاتا ہے. تو اس ایک کو جو ڈائریکٹ نر سے نارائن بنتا ہے, وشو کا مالک بنتا ہے, پریکٹیکل میں بنتا ہے, اس سرشتی میں وہ ہیرو پارٹ داری وشو کی ذمہ واری کا تاج دھاری ہے. سارے وشو کی ذمہ واری کا تاج باپ کا جو بڑا بچہ ہوتا ہے اسی کے سر پر رکھا جاتا ہے. تو آتماؤں کا باپ کون ہے؟ شیو. اور شیو کا آتما روپی بچوں کے بیچ بڑا بچہ کون ہے؟ جو بڑا بچہ ہے اسی کے لیے گائن ہے ترمورتی شیو. ارتھات برہما دیوتا, وشنو دیوتا اور شنکر دیوتا, تین اونچے تے اونچے دیوتاؤں کی تین مورتیاں. پرنتو وہ تینوں مورتیاں کس کی؟ शिव की तीन मूर्तियां जो सूक्ष्म बतन में नंबर बार दिखाई जाती है। ब्रह्मा की मूर्ति साकार बतन के नजदीक दिखाई जाती है। विष्णु की मूर्ति उससे ऊंची स्टेज में दिखाते हैं और शंकर की मूर्ति आत्माओं का जो धाम है, जो आत्माओं के बाप का घर है, आत्माओं का भी घर है, वो सब परम धाम के बिल्कुल नजदीक है। इसलिए कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उनसे भी ऊपर महादेव। तो बताओ शिव सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा कौन? क्योंकि बाप आते ही हैं मनुष्य को देवता बनाने, तो देवता बनने वालों में कोई तो अव्वल नंबर देवता होगा ना। जो अव्वल नंबर देवता बनता है उसी के लिए मुसलमानों में भी आज तक गैन है अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो वो ऊंचे थे ऊंचा मनुष्य सृष्टि का बाप, ऊंचे थे ऊंचे पाठधारी है और ऊंचे थे ऊंचे पद पाने वाला है। बाकी जो सतयुग में नारायण बनते हैं वो सब उतरती कला के बनते हैं। पहली गद्दी से ही दृष्टि का सुख भोगते भोगते शक्ति क्षीण होती रहती है और कलाएं नीचे गिरती रहती है। परंतु संगम युग में जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, सारे विश्व का मालिक बनता है, वो चढ़ती कला का है, उतरती कला का नहीं। क्योंकि अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला है। अतीन्द्रिय सुख भोगने वालों में सबसे ऊंची स्टेज वाला है। अतीन्द्रिय सुख का मतलब ही है इंद्रियों से अतीत। उसकी यादगार मंदिरों में दिखाई जाती है। शिवलिंग जो लिंग है, मूर्ति तो है, साकार तो है, परंतु उसको इंद्रियां नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इंद्रियातीत है। और वो अकेला ही ये नहीं है, ज्ञान सूर्य शिव है, उनके बच्चों का पूरा सूर्यवंशी परिवार है जो अति इंद्रिय सुख भोगने वाला है। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। किससे पूछो? नाम गोप गोपियां क्यों दिया? जैसा काम वैसा नाम। गोप माने ही गुप्त। जरूर भगवान बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़ा है। संबंध इंद्रियों के द्वारा ही जोड़े जाते हैं, परंतु जिसके साथ इंद्रियों के संबंध जोड़े हैं वो निराकार की बात नहीं है। निराकार को इंद्रियां होती हैं क्या? किसकी बात है? जिस साकार में वो निराकार प्रवेश करता है वो साकार पहले तो पतितम कामी कांटा होता है। इंद्रियों से अतीत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुरुषार्थी जीवन है। पुरुषार्थी का अर्थ है पुरु माने शरीर रूपी पुरी, शा माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा, आनंद करने वाली आत्मा, शांति का अनुभव करने वाली आत्मा, परंतु वो तो संपूर्ण आत्मा की बात है। जो अपूर्ण आत्मा देह के अटैचमेंट में होती है उसको संपूर्ण थोड़ा ही कहेंगे। तो जिस पतितम कामी कांटे में सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं वो संपूर्ण है पहले पहले या अपूर्ण है? है अपूर्ण है। परंतु शिव सुप्रीम जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है वो उसमें प्रवेश करता है। वो आत्मा जो पतितम कामी कांटे वाली आत्मा है वो भी ज्ञान के लाइट के संसर्ग संपर्क संबंध में आती है। लाइट कोई स्थूल लाइट नहीं है। त्रिकालदर्शी के सच्चे ज्ञान की लाइट है। तीनों कालों में सृष्टि की सत्यता क्या है वो सच्चाई का ज्ञान है। वो सच्चाई ही गॉड इज ट्रुथ कही जाती है और ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। नहीं तो वो क्या है? वो अकूट ज्ञान का भंडार ही है। वो अकूट ज्ञान का भंडार इस सृष्टि पर जब आता है तो आत्मा रूपी बच्चों के बीच जो बड़े से बड़ा बच्चा है, लंबे से लंबी आयु वाला है। बड़ा बच्चा लंबी आयु वाला होता है ना, तो उस बड़े बच्चे को वर्षा देता है पहले पहले। यही परंपरा खास करके भारत के राजाओं में और दुनिया में भी चली आ रही है। हिस्ट्री में जो भी राजाएं हुए हैं उन्होंने अपने कौन से बच्चे को राजाई दी? बड़े बच्चे को राजाई दी। इसीलिए गीता में भी लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। सुप्रीम सोल बाप ने जो परंपरा चलाई उसी परंपरा पर चलते आ रहे। ये तो रही आत्माओं और आत्माओं के बाप की बात और आत्मा रूपी बच्चों की बात और आत्मा रूपी बच्चों में जो बड़ा बच्चा है उस बच्चे की बात। अब साकार मनुष्य शक्ति में आ जाओ। साकार मनुष्य शक्ति रूपी जो वृक्ष है उसका बीज कौन है? अरे बीज है कोई या नहीं? कौन है? वही जो सभी धर्मों में थोड़ी बहुत मान्यता प्राप्त जरूर है। सनातन धर्म वाले जो द्वापर युग से अपन को हिंदू कहने लग पड़े वो भी उसे आदिदेव के रूप में मानते हैं। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वरो। मुसलमान लोग भी मानते हैं सृष्टि के आदि पुरुष को आदम के रूप में। क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं एडम के रूप में। जैनी लोग भी मानते हैं आदिनाथ के रूप में। तो वो सृष्टि का आदि पुरुष वो ही मनुष्य सृष्टि का बीज है। सृष्टि रूपी झाड़ में जड़ भी नष्ट हो जाती है, तना भी नष्ट हो जाता है, टहनियां भी नष्ट हो जाती हैं, फल फूल भी नष्ट हो जाते हैं, पत्ते भी नष्ट हो जाते हैं। क्या बचता है? है बीज बचता है। बीज अविनाशी है। जैसे ये हमारा शरीर रूपी झाड़ है, ये शरीर रूपी झाड़ विनाशी है। इसके सारे अंग, हाथ पांव नाक आंख कान सब विनाशी। परंतु इस शरीर का बीज कौन है? आत्मा विनाशी। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसे भारतीय परंपरा में शास्त्रों में बताया गया है कि उसका कोई बाप नहीं, कोई माता नहीं, वो स्वयंभू है, स्वयं ही उत्पन्न होता है, उसको कोई शाकाहारी माँ बाप जन्म नहीं देता। कैसे जन्म लेता है? सुप्रीम सोल बाप जब आते हैं, दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी चलाते हैं, उस वेदवाणी का मनन चिंतन मंथन करता है। जिसके लिए गायन है, रामायण में भी गायन है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान बाप का कहना है, ब्रह्मा मुख से ही बोला है अपने अपने शास्त्रों में, अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो बताओ, रामायण शास्त्र किसने लिखा है? कहते हैं तुलसीदास ने लिखा। लेकिन तुलसीदास वाली आत्मा कौन सी आत्मा है? तुलसीदास तो कलयुग में हुए, और रामायण जो राम कथा दर्शाती है वो तो पहले हो चुके हैं। तो तुलसीदास की आत्मा कौन सी आत्मा हुई? राम की आत्मा हुई। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण है, द्वापर में लिखी गई, वहां भी राम की कथा है। तो वाल्मीकि रामायण लिखने वाली आत्मा कौन हुई है? वही राम वाली आत्मा हुई। चाहे द्वापर युग हो, चाहे कल युग हो, ज्ञान की लाइट लगी हुई है। नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते, गीता में लिखा हुआ है। इस दुनिया में ईश्वर का जो सत्य ज्ञान है, जो गीता ज्ञान है, उससे जास्ती पवित्र और दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान माने जानकारी है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमपिता क्या है, सृष्टि क्या है, चौरासी का चक्र क्या है, कैसे फिरता है, इन ढेर की ढेर बातों की सत्य जानकारी वो ही ज्ञान है। इस ज्ञान को जानने वाला गॉड इज ट्रुथ का डायरेक्ट बच्चा है। अंग्रेज लोग कहते हैं कि क्राइस्ट गॉड का बच्चा है। अब बताओ, क्राइस्ट ने जो बोली बाइबल, जो बाद में बाइबल के रूप में छपाई गई, उस बाइबल में ज्यादा ज्ञान की गहराइयां हैं या भगवत गीता में ज्यादा ज्ञान की गहराइयां हैं? सारी दुनिया, सारे धर्म के लोग मानते हैं कि गीता में जितना गहरा ज्ञान है, उतना गहरा ज्ञान दुनिया के और किसी शास्त्र में नहीं। वो एक ही शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद् गीता। किसकी गीता? भगवत, भगवान की गीता, भगवान का गाया हुआ गीत, जिसमें सारी सच्चाई भरी हुई है। परंतु वो संस्कृत की गीता नहीं, वो तो मनुष्यों ने लिखी है, और मनुष्यों में भी कोई ज्ञान की लाइट को धारण करने वाला मनुष्य है। इस सृष्टि में पहले पहले ज्ञान की लाइट को धारण करता है। जिसका नाम गीता में आया हुआ है, व्यास प्रसादात। गीता ज्ञान किसके प्रसाद से मिला? व्यास के प्रसाद से मिला। व्यास का अर्थ क्या है? वि माने विशेष, आस माने बैठ गया, विशेष रूप में बैठ गया। किस लिए बैठ गया है? जो सुप्रीम सोल बाप है, सुप्रीम गॉड फादर है, उसका वर्षा पाने के लिए खास बैठ गया। दुनियादारी के सारे धंधे छोड़ छाड़ करके, देह और देह की परवरिश के सारे लौकिक धंधे छोड़ करके किसके लिए बैठ गया है? सुप्रीम सोल बाप का जो वर्षा है वो पाने के लिए। क्या है वर्षा? सुप्रीम सोल बाप का क्या वर्षा है? हैं? सुप्रीम सोल बाप क्या है? अरे बाप धनवान है तो धन का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनर है तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा, राजा है तो राजा ही का वर्षा देगा। अरे ये सुप्रीम सोल बाप क्या है? ज्ञान का अखूट भंडार है। जो ब्रह्मा के मुख से वाणी चली, जिसे मुरली कहा जाता है, उसने बताया भी है, मुरली से प्यार माना मुरली इधर से प्यार। उस ज्ञान की मुरली से प्यार नहीं तो मुरली इधर से प्यार नहीं, वो तो मुरलीधर की बात हुई। मुरली अंग्रेजी में लिखेंगे तो मुरली भी आता है, अर्थात जब चाहे जैसे चाहे मुरली, उसका नाम हुआ मुरली। हिंदी में कहेंगे मुरली, वो ज्ञान की मुरलिया, भक्ति मार्ग में काठ की मुरलिया दिखाई जाती है। क्या? क्यों काठ की मुरलिया बताते हैं? क्योंकि जिसके मुख से बोली गई है, कोई आत्मा के मुख से तो बोली गई होगी ना? कौन सी आत्मा के मुख से बोली गई है? दादा लेखराज के मुख से बोली गई। वो लेखराज वाली आत्मा कठबुद्धि थी, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों को गुस्सा आ जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत खुश होंगे, क्यों? बात सच्ची है या झूठी है? सच्ची कैसी है? कि दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो मुरली बोली गई, उस आत्मा ने उस मुरली का मनन चिंतन मंथन नहीं किया, या कोई धनवान बाप का बच्चा हो और धन का उपयोग न करे, धन का सही उपयोग करे ही नहीं, तो वर्षा बेकार गया ना कि कारगर हुआ? बेकार गया। ऐसे ही भगवान बाप सुप्रीम सोल का जो वर्षा है, ज्ञान की लाइट, उस ज्ञान की लाइट का ब्रह्मा वाली दादा लेखराज वाली आत्मा ने उपयोग नहीं किया, क्यों? क्योंकि षष्ठी रूपी रंगमंच पर शास्त्रों में भी उसका नाम हिमालय राज है। क्या नाम दिया? हिम आलय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। काहे का घर? बर्फ का घर, बहते हुए ज्ञान जल का घर, या जाम पत्थर की तरह। तो पत्थर बुद्धि का ज्ञान हो गया, ज्ञान मानसरोवर का ज्ञान नहीं कहेंगे। वो ज्ञान मानसरोवर भी हिमालय पर्वत पर है, ऊंची स्टेज में है, परंतु वो ज्ञान जल जाम है या लिक्विड है? है जाम है। जाम माने जमा हुआ, जैसे बर्फ पत्थर की तरह जम जाती है। तो देखो, ये बुद्धि की बात है। बुद्धि हजार नियामत है, हर आत्मा को अपने अपने पूर्वजन्मों के हिसाब से बुद्धि मिलती है। जिन्होंने बुद्धि का सदुपयोग किया, उनको अच्छी बुद्धि मिलती है। जिन्होंने दुरुपयोग किया, उनको उतनी अच्छी बुद्धि नहीं मिलती। सिर्फ बुद्धि की ही बात नहीं, कोई भी अंग की बात है। कोई जन्म से ही लूले लंगड़े पैदा होते हैं, अंधे पैदा होते हैं, क्यों है? कहां से आया ये अंधापन, लूलापन, लंगड़ापन? पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर आया। तो बताया इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा है हीरो पाटधारी, जो ज्ञान की रोशनी में सदा रत रहती है। इसलिए नाम क्या पड़ता है? भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। सतयुग त्रेता में तो आत्मिक स्थिति में सभी रहते हैं देवताएं, वहां की तो बात छोड़ दो, लेकिन जो द्वैतवादी युग है, द्वापर युग, जहां द्वैत फैलाने वाले, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें फैलाने वाले देहधारी धर्म पिताएं आते हैं। उस द्वैतवादी द्वापर युग की दुनिया में भी वो भारत है जो ज्ञान की रोशनी में ही रत रहने वाला है, वो व्यास के रूप में गीता का सार तैयार करता है। इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियों के ज्ञान यज्ञ के आदि में वो गीता के ही श्लोकों का सार सुनाया जाता था। आदि में भी गीता थी और जो आदि में सो अंत में भी गीता के क्लैरिफिकेशन लोगों की बुद्धि में आवेंगे, जवान पर चलेंगे। जो विद्वान पंडित आचार्यों में आज भी मान्यता है, चाहे ब्रह्मा भी उतर आवे, साक्षात भगवान भी उतर आवे, तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। अकाट्य सत्य है, सत्य कभी नष्ट नहीं होता। जो गीता में भी लिखा है, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य का इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता और सत्य एक ही हो सकता है, सत्य अनेक नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा ने बोला, इस सृष्टि पर सदाकाल कायम कोई चीज है ही नहीं, सदाकाल कायम एक ही शिव बाबा है। शिव बाबा साकार और निराकार का मेल एक ही है, वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। उसी के लिए गायन है, कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। सृष्टि का महामृत्यु का काल, क्योंकि सामान्य मौत तो 84 जन्मों में आती ही रहती है, लेकिन जब चतुर्युगी का अंत होता है, कल्प का अंत होता है, तो सारी सृष्टि काल के गाल में समा जाती है। परंतु वो महाकाल काल के गाल में नहीं जा सकता, वो स्थिर रहता है। इसीलिए झाड़ के चित्र के ऊपर देखो ध्यान से, कौन बैठा है? नग्न मूर्ति बैठी हुई है, अर्थ है निराकारी, देह रूपी वस्त्र नहीं है। देह रूपी वस्त्र को और उस देह की इंद्रियों को भूला हुआ, जिसकी भारतवर्ष में आज भी शिवलिंग के मंदिर बनाकर खास पूजा होती है। सारी दुनिया में वो लिंग मूर्तियां खुदाइयों में प्राप्त हुई है, वो सार्वभौम मान्यता प्राप्त है। तो वो शिवलिंग जिसका सात्विक रूप द्वापर के आदि में मूर्ति के रूप में दिखाया गया, सोमनाथ का मंदिर, जिसमें लाल पत्थर का लिंग और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था। आज तक उस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। भगवान बाप सुप्रीम सोल ने बताया, बच्चे न मैं पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो कोई बताए कि जो पूज्य रूप शिवलिंग रखा हुआ मंदिरों में और सोमनाथ के मंदिर में भी शिवलिंग, वो किसकी यादगार है? वो पूज्य रूप शिवलिंग की मूर्ति जिसके लिए गीता में भी कहा है अव्यक्त मूर्तना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त भी है और मूर्ति भी है। मूर्ति माने मूरत भी है, दोनों है। साकार और निराकार का मेल है। वो लिंग अव्यक्त इसलिए है कि उसमें शरीर की कोई भी इंद्रिय, नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, कुछ भी नहीं दिखाया गया। दिखाते हैं? हैं? नहीं दिखाते, इसलिए अव्यक्त है। और सोमनाथ मंदिर में उस भावना का असली रूप दिखाया गया कि उस लिंग रूप में, बड़े रूप में, साकार रूप में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार है? जोर से बोलो। निराकार शिव, निराकार शिव की यादगार। हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? है? होता है। जैसे नौ रत्न पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? है? पत्थर होते हैं। शिव कभी पत्थर बुद्धि बनता है क्या? बनता है? तो बताओ वो हीरा किसकी यादगार है? हाँ, हीरा हीरो पाटधारी की यादगार है। वो हीरो पाटधारी पहले पुरुषार्थी जीवन में है। पुरुषार्थी का मतलब ये है आत्मा के अर्थ कार्य करने वाला। जो भी करेगा किसके लिए करेगा? आत्मा के कल्याण के लिए। शरीर के कल्याण के लिए कोई परवाह नहीं। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने का नहीं रह गया। तो आत्मा के अर्थ क्या पाना है? आत्मा के अर्थ पाना है कि आत्मा जन्म जन्मांतर सुख में रहे, दुख में ना आए। आत्मा शांत रहे, अशांति में ना आए। तो शांति का वर्षा, मन मुक्ति का वर्षा, दुख दर्दों से मुक्ति, ये वर्षा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से सभी को प्राप्त होता है, लेकिन सभी आत्माएं शरीर छोड़ करके आत्मलोक में जाके बैठती हैं और शांति का वर्षा प्राप्त करती है। लेकिन मुक्ति से भी ऊंचा एक और वर्षा है बाप का, क्या? जीवन मुक्ति। तो निराकार बाप, सुप्रीम सोल बाप, निराकारी बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? क्या है निराकारी वर्षा? ज्ञान। निराकारी बाप का वर्षा क्या है? ज्ञान। तो निराकारी बाप ज्ञान का जो सार है उस सार का वर्षा पहले पहले देता है। क्या है वो सार? है मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये ज्ञान का सार है। इस सार में सभी मनुष्य मात्र को टिकना है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, अणु से भी अणु रूप, और आत्मलोक की रहने वाली हूँ। आत्मलोक की रहने वाली जो आत्माएं वो बाप के घर की बच्चे हैं। बाप है सुप्रीम सोल, वो सुप्रीम सोल सेवा सदाकाल कहाँ का वासी है? है परम धाम का वासी है। भले सृष्टि पर भी आता है तो भी बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ धरी रहती है? परम धाम में धरी रहती है। तो वो है मुक्ति का दाता, आत्मज्ञान दे करके इस देह और देह की दुनिया से मुक्त कराता है। मुक्त करता है या कराता है? है कराता है, माने रास्ता बताता है कि तुम अपन को आत्मा समझो। इस प्रैक्टिस में जो आगे जाएगा वो पहले पहले इस देह और देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, देह के संपर्कियों से सदा काल के लिए मुक्त हो जाएगा। और मुक्त होने के बाद इस दुख की दुनिया में वापस नहीं आएगा। ये वर्षा मुक्ति धाम का वर्षा, निराकारी धाम का वर्षा, निराकार आत्माओं का बाप देता है। क्या? धनवान बाप कहीं का वर्षा देगा? है धन का वर्षा देगा। वो निराकारी बाप जीवन मुक्ति का वर्षा दे सकता है। वो स्वयं जीवन मुक्त है, 84 जन्मों के जीवन में रहते हुए दुख अशांति से मुक्ति का वर्षा दे सकता है, है? दे सकता है? नहीं दे सकता। बाप जैसे धन का भंडार वाला होगा वैसे ही धन का भंडार देगा। इसलिए वो सिर्फ रास्ता बताता है, ये जीवन धारण करने वाली आत्माओं क्या जन्म जन्मांतर जीवन धारण करने वाली आत्माओं मैं रास्ता बताता हूँ, तुमको श्रीमत देता हूँ। उस श्रीमत पर जो जितना चलेगा वो उतना जीवन में रहते क्या सुख शांति का जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकेगा। और वो जीवन मुक्ति का वर्षा लेने वालों में भी जो अव्वल नंबर होगा वो ही अव्वल नंबर दुनिया में जो अव्वल नंबर धर्म है सत्य सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म, उस धर्म का प्रवर्तक होगा। धर्म का स्थापक होगा। अब बताओ दुनिया में सभी धर्म वाले अपने धर्म के स्थापक को जानते हैं, मानते हैं, धर्म पिता को जानते हैं, क्रिश्चियंस क्राइस्ट को मानते हैं, मुसलमान मोहम्मद को मानते हैं, इस्लामी इब्राहिम को मानते हैं, बौद्ध भी बौद्ध को मानते हैं। भारतवासियों को यही पता नहीं, विधर्मियों के संघ के रंग में आते आते, विदेशियों के संघ के रंग में आते आते, ऐसे उनके रंग में रंग जाते हैं कि उन्हें अपने धर्म पिता का भी ज्ञान नहीं रहता, धर्म पुस्तक का भी ज्ञान नहीं रहता। अरे धर्म को भी भूल जाते हैं, कह देते हैं हिंदू धर्म। क्या कह देते हैं? हिंदू धर्म। ये हिंदू धर्म इसकी शूटिंग करने वाले कौन हैं? कोई ग्रुप तो होगा जिसने पहले पहले अपने को हिंदू कहना शुरू किया। हिंदू का अर्थ क्या है? हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, दूर करने वाला। क्या हिंदू माने हिंसा को दूर करने वाले। ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में जब भगवान बाप डायरेक्टर बन करके आते हैं, पर्दे के पीछे रह करके गुप्त पार्ट बजाते हैं, तो हिंदू की शूटिंग कौन करता है कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, हम स्थूल हिंसा को भी दूर करने वाले हैं, और दुनिया में जो भी हैं, चाहे वो अपने को एडवांस पार्टी क्यों न कहलाते हो, वो सब हिंसा को बढ़ाने वाले। बताओ ब्राह्मणों की नौकरियां होती हैं, कौन से ब्राह्मण हैं नौकुरियों के ब्राह्मणों में से जो जन्म जन्मांतर द्वैतवादी द्वापर युग से विदेशियों विधर्मियों के संसर्ग संपर्क में आकर के कन्वर्ट होते रहे, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए, जो भी धर्म पिता आया उनके पीछे पीछे उनके धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। बताओ ऐसा वो ग्रुप कौन सा है अभी देखने में आता है, है? हाँ, चंद्रमा की गोद में खेलने वाले, ज्ञान चंद्रमा माता की गोद में खेलने वाले वो बच्चे जो गोद अर्थात तो कुख वंशावली है, जिनको कोख का बड़ा नशा है, हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, तुम तो कल के बच्चे हो, तुम हमको क्या ज्ञान सुनाओगे, ऐसे ऐसे अहंकार में आकर के बोलने वाले वो ब्राह्मण अपन को समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं और दुनिया में सब हिंसा को बढ़ाने वाले। तो वो ही अपन को हिंदू कहलाने वाले, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, जैसे झाड़ में मनुष्य सृष्टि के वृक्ष में कोई डालियां हैं जो दाई ओर के धर्मों में झुक गई, भारतीय धर्मों में झुक गई, जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, और कोई डालियां हैं जो बाई ओर के विदेशी धर्मों में झुक गई। कन्वर्ट हो गई, एक ही तना है बीच में असल सूर्यवंशियों का, जो आदि से लेकर के अंत तक सीधा जाता है ऊपर, जिसे मुख्य तना कहा जाता है। तो भारत में भी तीन प्रकार के संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध हैं, ब्रह्म समाजी, ब्रह्मा के फॉलोअर्स, वैष्णव पंथी, किसके फॉलोअर्स, विष्णु के फॉलोअर्स, और तीसरे शैव संप्रदाय जो शिव के फॉलोअर हैं। एक लिंग भगवान को मानने वाले हैं, जैसे भारत की माताएं अपने जीवन में एक लिंग स्वामी पति परमेश्वर को मानती हैं, या अनेकों का आधार लेती हैं, तो ये तीन प्रकार के संप्रदाय हैं। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में रिहर्सल हो रही है। भगवान बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर जब आते हैं तो तीन मूर्तियों के द्वारा ये तीन प्रकार की क्यूब्स पहले तैयार होती है। अभी फाउंडेशन पड़ रहा है, श्री गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव। गुण कर्म और स्वभाव, हर आत्मा जो एक्ट करती है उसकी एक्ट से उसके गुणों का पता चलता है, कर्मों का पता चलता है और उसके अच्छे या बुरे स्वभाव का पता चलता है। इनके आधार पर भगवान बाप डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह करके चार युगों में जन्म लेने वाली, परमधाम से उतरने वाली चार प्रकार के वर्णों की आत्माओं की रचना कर रहे हैं। कोई सतयुग में उतरती है, देवता बनती है, कोई त्रेता में उतरती है, क्षत्रिय बनती है, कोई द्वापर में उतरेंगी, वैश्य बनेंगी, कोई कलयुग में उतरती है, शूद्र बनेंगी। इन चारों वर्णों की रचना अभी हो रही है। कोई मनुष्य आत्मा है, कलयुगी धर्म पिताओं को फॉलो करेंगी। कोई मनुष्य आत्मा है, द्वापर युगी धर्म पिताओं को फॉलो करेंगी। कोई त्रेता में क्षत्रिय वर्ण में जाएंगी और कोई सतयुग में देवता वर्ण में आवेंगी और उनसे भी ऊंची एक और स्टेज है। संगम युग में कोई आत्माएं हैं जो चारों युगों की प्राप्ति में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो बोला है कि कोई कोई आत्माएं तो हैं, कोई कोई जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहती, तो ये सुख शांति का वर्षा जितना जो लेना चाहिए। अभी संगम युग में साकार और निराकार के मेल से साकार है माता और निराकार है पिता। निराकार माने बीज, साकार माने माता। वो निराकार बीज माता में आता है तब षष्ठी रूपी परिवार चलता है। तो वो साकार निराकार का मेल, उसके द्वारा हमको अनेक जन्मों का मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल रहा है। अब जो जितना चाहे उतना ले सकता है। तो बताया पुजारी बन करके जो अपन को ही माथा टेकते हैं, वो कौन है? जो संगम युग में भी शूटिंग करते हैं और वो कौन है जो कोई साकार को माथा नहीं टेकता? माथा टेकना माने है बुद्धि झुकाना। जो कोई को सामने नहीं झुकता वो चारों युगों में भी कोई के सामने नहीं झुका होगा। द्वापर कलयुग में कोई ऐसे सैंपल हैं पाटधारी मनुष्यों के जिन्होंने सारे विश्व के चिन्ह हुए कितने भी बड़े से बड़े महत्वाकांक्षी हुए हों, हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, सारे विश्व को विजय करने के महत्वाकांक्षी, उनके सामने भी कभी माथा नहीं टेका है। ऐसे हिस्ट्री में हुए हैं या नहीं हुए है? हुए हैं। जो हुए हैं वो कभी पुजारी नहीं बनते किसी के, देहधारी के। और निराकार की तो पूजा होती ही नहीं। निराकार जो सदैव है, सदाशिव है, वो पूज्य बनता है क्या? है पुजारी बनता है तो उसकी पूजा का सवाल ही नहीं। उसको तो पहचान करके याद किया जा सकता है और वो याद भी सशक्त आत्माएं कर सकती हैं। सभी आत्माएं याद नहीं कर सकती निराकार को। निराकार को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? क्यों? क्योंकि 63 जन्म का अभ्यास पड़ा हुआ है साकार शरीरों से सुख लेने का। 63 न कहें 84 जन्म भी कहें, देवताएं भी शरीर की इंद्रियों से ही सुख लेते हैं। तो जो साकार को याद करने का अभ्यास पड़ा हुआ है जन्म जन्मांतर का, वो सहज ही छूटता नहीं है। इसलिए बताया कि जब सारी सृष्टि का अंत होगा, मनुष्य मात्र की आत्माएं आत्मिक स्टेज में तो टिकेंगी, लेकिन अपने पुरुषार्थ से नहीं। उनमें 8 तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके लिए बोला है तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। नैनों पे कैसे बिठाया जाता है? प्यार से बिठाया जाता है या लाल लाल आंखें करके बिठाया जाता है? प्यार की बात है, बाकी कुछ न कुछ है। धर्मराज की सजाएं खा जाते हैं। कौन बनता है धर्मराज? है वो ही धर्मराज बन सकता है जिसने धारणाएं की हो, देवताओं में ज्यादा धारणा होती है या मनुष्यों में ज्यादा धारणा होती है या राक्षसों में ज्यादा धारणा होती है। देवताओं में पहला पत्ता कौन है? प्रजापिता है। जो कृष्ण वाली आत्मा है, सतयुग का पहला नारायण है, वो धारणाओं में सबसे उत्तम। धारणाओं में मुख्य धारणा कौन सी? सहनशीलता। इसलिए बोला मनमना भव। क्या बोला? क्या मतलब? मेरे मन में समा जा। कौन सी आत्मा ने बोला है? शिव को तो मन होता ही नहीं, वो क्यों बोलेगा मेरे मन में समा जा या मेरे दिल में समा जा? इस दुनिया में भी कोई राजा हुए हो, महाराजा हुए हो, कोई भी मनुष्य मात्र हुए हो, उनका दिल आखिरी इन जीवन में अपने बड़े बच्चे की ओर जाता है। सारा दिल किसको दे देते हैं? बड़े बच्चे को दे देते हैं। माता को भी नहीं देते, क्योंकि माता भी अपना सब कुछ किसको अर्पण कर देती है? हैं? बड़े बच्चे को अर्पण कर देती। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? संगम युग से शुरू हुई। शिव बाप जिस साकार तन में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, वो बीज से जो पहला पत्ता निकलता है कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। वो कृष्ण वाली आत्मा ही उसका दिल है। इसीलिए मनुष्य सृष्टि का बाप जो भी निराकारी बाप से ज्ञान का वर्षा लेता है, उस ज्ञान का वर्षा पहले पहले किसको अर्पण करता है? है? कौन बड़ा बच्चा? कृष्ण बच्चे को अर्पण करता है। सारी पढ़ाई किसके लिए? कृष्ण बच्चे के लिए। सारा क्लेरिफिकेशन टीचर के रूप में, सुप्रीम टीचर के रूप में किस बच्चे के लिए है? है? कृष्ण बच्चे के लिए। तो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम बीज बोने वाला और वर्षा देने वाला जीवन मुक्ति का सुप्रीम बाप भी है। ज्ञान का वर्षा देने वाला है या जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है? है? अरे ज्ञान का वर्षा अगर देने वाला हो तो उससे ऊपर भी तो कोई बैठा है। कौन है? सुप्रीम सोल बाप, सुप्रीम सोल बाप जो सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है, वो ज्ञान का वर्षा देने वाला है या जिसमें प्रवेश करता है वो ज्ञान का वर्षा देने वाला है? हैं? वो ज्ञान का वर्षा देने वाला है और जिसमें प्रवेश करता है वो उस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप देता है। प्रैक्टिकल रूप देने के बाद जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला कहा जाता है। बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो बाप से कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? क्या मिलता है? है वर्षा मिलता है, बाप से जन्म मिलता है। तो हर मनुष्य आत्मा को अपने अनेक जन्मों में से जो पहला जन्म है सर्वोपरि मनुष्य सृष्टि में, तो सब पहले जन्म की जानकारी मिलती है। उस जानकारी के आधार पर वो फिर पुरुषार्थ करता है कि हमें ये पद मिलने वाला है। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों का सार रूप में जिसने क्लेरिफिकेशन दिया वो ही बाप हो गया, और प्रैक्टिकल जीवन में उन साक्षात्कारों को अनुभव किसने किया? जिसको साक्षात्कार हुए उसने अनुभव किया या किसी दूसरे ने अनुभव किया? जिसको अनुभव हुआ उसको पक्का निश्चय बैठ गया। क्या है? हाँ, किस स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ माने स्वर्ग में मैं पहला प्रिंस बनने वाला हूँ। विनाश का साक्षात्कार हुआ माने बुद्धि में बैठ गया इस दुनिया का विनाश होने वाला है। सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ मन बुद्धि में बैठ गया कि मैं ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाला हूँ। फिर विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बुद्धि में बैठा ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो पहले पत्ते को ज्ञान के आधार पर निश्चय का साक्षात्कार हो गया। जैसे वर्षा मिल गया और उसके आधार पर उन्होंने अपने जीवन में जो महामंत्र है, क्या? मनमना भव महामंत्र तो है, लेकिन वो महामंत्र पहले किसके ऊपर लागू होता है? है मेरे मन में समा जा, किसने बोला? प्रजापिता वाली आत्मा ने बोला मेरे दिल में समा जा। उसके दिल में क्या है? नई सृष्टि, नई सतोप्रधान सृष्टि का आरंभ करना, नई राजधानी स्थापन करना। तो नई राजधानी का वर्षा कौन लेगा? किसके ऊपर उस बाप का दिल आया? है बड़ा बच्चा है, पहला पत्ता सृष्टि रूपी बच्चे का वो ही दिल हो गया। इसलिए बताया इस मन मना भव के मंत्र को प्रैक्टिकल जीवन में जो ब्रह्मा की तरह फॉलो करेगा वो ही ऊंचे से ऊंचा देवता बनेगा। क्या विशेष क्या पुरुषार्थ करना है? कौन सी धारणा का पुरुषार्थ करना है? है सहनशीलता का, सहनशीलता से ही
नई दुनिया की राजधानी स्थापन होगी।
अगर सहन नहीं किया, सामना करना शुरू कर दिया तो राजधानी में नहीं आ सकेंगे। कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है, ये भी परखना है। जो ज्ञान सूर्य के परिवार वाले हैं, मनुष्य सृष्टि की जो उत्तम से उत्तम पीढ़ी है, उत्तम से उत्तम राजधानी है, जहाँ माला रूपी संगठन बनता है, एक के स्नेह के धागे में पिरोया हुआ मणकों का संगठन, उस परिवार के भातियों को पहचानना और उनके प्रति सहनशीलता को धारण करना, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हैं, उन परिवार के भातियों के बीच सहनशील बनना है। और जो परिवार के भांति नहीं है, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, उनके प्रति सामना करने वाला महाकाली का रूप धारण करना, विकराल रूप धारण करना, तो बात चल रही थी कि धर्मराज का पार्ट कौन बजाएगा, धर्म का राजा कौन, जिसने सर्वोत्तम धर्म की धारणा को धारण किया पहले पहले। ऐसा सहन करके दिखाया जैसा दुनिया में आज तक कोई माता ने सहन करके नहीं दिखाया होगा। सभी माताएं ब्रह्मा माता के मुकाबले उस सहनशीलता की धारणा में नंबरवार हो जाती हैं। इसलिए वो माताएं जब सृष्टि का अंतिम काल आता है, वो माताएं ही महाकाली की भुजाएं बनती हैं और महाकाली बनकर के दुनिया के सारे असुरों को क्या कर देती हैं, खलास कर देती हैं। सारी दुनिया में सारे के सारे 500-700 करोड़ असुर ही असुर भरे पड़े, सारी दुनिया पतित बन जाती है, तामसी बन जाती है, सबके ऊपर राज्य करती है। राज करेगा खालसा, उस माता का नाम प्रकृति है, ये जोड़ी है पुरुष और प्रकृति की। पुरुष बाप है और प्रकृति माता है। प्रकृति का अर्थ ही है प्र माने प्रकष्ट रूप, कृति माने रचना, माने भगवान बाप जब आते हैं नई सृष्टि रचने के लिए तो पहले पहले बाप का रूप धारण करते हैं। किसके द्वारा, किसके द्वारा, अरे सुप्रीम चोला बाप आते हैं मनुष्य शक्ति रखते हैं तो मनुष्य शक्ति का बीज रूप बाप प्रत्यक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन है वो सुप्रीम सोल? मुरली में ही बोलता है, मैं आशिक हूँ। आशिक बनकर के आता हूँ, तुम्हारे ऊपर तुम माशूक हो। बताओ कौन माशूक है? प्रजापिता वाली आत्मा माशूक है। माशूक स्त्री होती है या पुरुष होता है? तो स्त्री बनाया उसे। पहली रचना बनाया, अब सुप्रीम सोल गॉड फादर जिसका आशिक बनेगा तो सारी दुनिया को उसका आशिक बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? तो बोला, तुम सब बच्चे हो आशिक और शिव बाबा है माशूक। शिव बाबा माशूक है या शिव बाप माशूक है? हैं? शिव बाबा माशूक है। तो शिव बाबा को माशूक बनाया। बाबा साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार हुआ। तो वो साकार में मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है, तो उसके ऊपर भी जिम्मेवारी आ जाती है। जो बाप का धंधा तो बच्चे का धंधा, सृष्टि का निर्माण करना, नई सृष्टि का निर्माण करना, सात्विक सृष्टि का निर्माण करना। तो इस काम के लिए प्रवृत्ति को चुनेगा या निवृत्ति को चुनेगा? प्रवृत्ति चाहिए। तो कौन सी आत्मा प्रवृत्त बनती है? जिसे जगदम्बा कहा गया, सारे जगत की अम्बा, सारे जगत में सिर्फ चैतन्य है या जड़ भी है? है? इस जगत में जड़ ही जड़ है या चैतन्य आत्माएं भी हैं? है, चैतन्य आत्माएं भी हैं। आत्मा अलग चीज और शरीर अलग चीज। जैसे प्रजापिता जिसे कहा गया, उसमें जड़ शरीर भी है और चैतन्य आत्मा भी है। तो जो सुप्रीम सोल बाप है वो किस पर फिरदा होता है? आत्मा पर फिदा होता है या शरीर पर फिदा होता है? हैं? क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच में चार सीन वाले युगों के मंच में एक ही आत्मा है जो आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक आसुरी संस्कार वालों से टकराती है। कोई ऐसी आत्मा होगी या नहीं होगी मनुष्य सृष्टि में? है, जरूर होती है। वो एक ही आत्मा है जो सत्य के लिए लड़ाई लड़ती है। बाकी जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, धर्म पिताओं से लेकर के उनके फॉलोअर्स तक भी, सब लोक लाज में दब जाते हैं। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। इसलिए लोक माने संसार, दुनिया, दुनिया वालों की लोक लाज में जो मर जाते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और जो एक सुप्रीम सोल गॉड फादर की लाज रखता है वो ही विश्व विजयी बनता है। तो सुप्रीम सोल तो जानता है त्रिकालदर्शी होने के कारण कि इस सृष्टि में सत्तात्मा कौन है, जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही सत्य है और सब सब असत्य है, सारे धर्म पिताएं असत्य हैं। सत्य एक ही होता है। यज्ञ के आदि में भी, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। झगड़ा शुरू हो गया। धोबी घाट की बात को लेकर के सारे विरोध में आने लगे। पहले पहले दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा भागी, भयंकर लड़ाई सामने देख करके। कराची में जाके पता नहीं कौन से बगले में छिप गए, जो आदि में सो अंत में, 98 में भी वही शूटिंग होती है। जो जगत माता का टाइटल लेने वाली जगदम्बा कही जाती है, उसे सारे जगत की अम्बा कहो या ब्रह्मा कहो, क्योंकि जगदम्बा के ही महाकाली रूप में मस्तक में कौन दिखाते हैं, चंद्रमा दिखाते हैं। तो जब 98 में शूटिंग होती है, द्वापर के अंत में कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है, 15 अगस्त जन्माष्टमी के दिन जेल से मुक्त होती है, तो उस संगठन में से माता गायब हो जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है, भाग जाती है या ठहर जाती है। अब जिस परिवार की मुख्य सदस्य मुख्य सहयोगी माता ही भाग जाए, उस परिवार का क्या हाल होगा, विघटन हो जाता है। तो विघटन हुआ, एक ही रह गया, मना सन 42 में, 1942 में एक आत्मा एक तरफ, और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। जो शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा तीन बार ब्राह्मण सृष्टि रची गई और तीनों बार को रिजेक्ट कर दिया। 36 में रची गई, 42 में रिजेक्ट हो गई, 47 में ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमारियों की सृष्टि रची गई, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, पहले क्या नाम था, ओम मंडल नाम था, नाम भी बदल गया, स्थान भी बदल गया। दूसरी बार सृष्टि रची गई 69 में, उस सृष्टि का भी जो मुखिया था दादा लेखराज, 18 जनवरी 1969 को देहावसान हो गया। जैसे पहली बार 42 में विघटन हुआ शुरू और 47 में नई दुनिया की शुरुआत स्पष्ट देखने में आई, ऐसे ही 69 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का मुखिया ध्वस्त हुआ और 6-7 साल के बाद 1976 में नई सृष्टि की घोषणा जो 66 में हो चुकी थी, जो बोला था ब्रह्मा के द्वारा मुरलियों में सुप्रीम सोल बाप ने इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, 10 वर्ष कम 5000 वर्ष माना 76 में, तो 76 में ब्राह्मणों की नई दुनिया एडवांस पार्टी की शुरुआत हो गई। आप मुए मर गई दुनिया, नई दुनिया की शुरुआत हुई, ब्राह्मणों का नया संगठन बना और पुराने संगठन का विघटन होने लगा। विघटन का मतलब पुराना जो संगठन रूपी किला था उसमें से एक एक करके ईंटें खिसकती चली गई, किले की ईंटें एक एक करके खिसकती चली जाए तो आखिरी किले का क्या हाल होगा, किला गिर जाएगा। तो वो 40 वर्ष भी पूरे हो गए, जो बोला था तुम बच्चों को, क्या किन बच्चों को, तुम बच्चों को माने सन्मुख बैठने वाले बच्चों को बोला, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तो 76 से जो एडवांस ज्ञान शुरू होता है, ज्ञान का विस्तार शुरू होता है, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया गया, पहले पहले वेद निकलते हैं, वेद वाणी, किसने लिखे वेद, कोई नाम है, अरे वेद किसने लिखे, वेद व्यास ने, वो ही आत्मा। बाद में वेदों की भांति भांति की व्याख्याएं होने लगी, पहले पहले आरण्यक निकले व्याख्या में, फिर शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, फिर उपनिषद निकले और फिर उपनिषदों की भी व्याख्याएं, पुराण निकले, भागवत महापुराण, महाभारत महापुराण, ये व्याख्याएं अनेक प्रकार की जो लिखी गई, इनका भी आरंभकर्ता कौन था? कोई था या नहीं था? वो ही भारत जो ज्ञान की रोशनी में सदा रत रहता है। वो आत्मा ज्ञान को जो एक सब्जेक्ट है ईश्वरीय पढ़ाई का, अव्वल नंबर सब्जेक्ट है या दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर का फोर्थ क्लास सब्जेक्ट है? अव्वल नंबर सब्जेक्ट, उसको धारण करने में सबसे आगे जाता है। इसलिए दिखाते हैं कि ब्रह्मा के पहले पहले चार मानसी पुत्र हुए, उनमें से ज्ञान में सबसे बड़ा होने के कारण सनत कुमार सनातन धर्म का स्थापक साबित हो गया। जो योगीश्वर कहा जाता है, ज्ञानीश्वर कहा जाता है। अब बताओ, योगीश्वर एक होगा या तीन तीन होंगे? शंकर को भी कहा जाता है योगियों का ईश्वर, कृष्ण को भी कहा राजा कहा जाता है योगी राज, और सनत कुमार को भी योगियों का ईश्वर कहा जाता है। तो तीनों एक के ही नाम है अलग अलग या अलग अलग आत्माएं हैं? एक ही आत्मा है। वो ज्ञान का वर्षा धारण करने वाली आत्मा, ज्ञान जैसे बीज है, वो बीज में से पहली पहली जड़ कौन सी निकलती है? जड़ कहो, आधार कहो, धरणी कहो, कौन है? जड़ है, उसका नाम जड़ क्यों कहा गया? जड़ तुम्हें है। वो कौन है? है आत्माओं के बीच वो जड़त्व में ही कौन है? पांच जड़ तत्वों का संहार, धरणी। धरणी को माता कहा जाता है। वो धरणी माता सीता माता, धरणी से ही जन्म लेती है और अंत में धरणी में ही समा जाती है। उसको कहते हैं सीता माता। सीता अर्थात शीतल, नहीं तो धरणी के अंदर तो भयंकर अग्नि भरी हुई है। जब भूकंप आते हैं तो क्या निकलता है? आग उगलती है धरणी, जिसे कहा जाता है लावा। जैसे लोहा जब पूरा पिघल जाता है तो एकदम अग्नि की तरह बहने लगता है। तो धरणी माता तो है, लेकिन जड़त्वमयी है, यह चैतन्य है, है जड़ है। उस जड़ को चलाने वाली कोई आत्मा चैतन्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है वो कौन है? नहीं, ब्रह्मा तो शीतल चंद्रमा है, चंद्रमा धरणी का उपग्रह है, बच्चा है, धरणी से ही निकलता है और धरणी की गोद में ही बैठता है। चंद्रमा सीता नहीं है, सीता माने शीतल, चंद्रमा भी शीतल संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। और क्योंकि घटता बढ़ता रहता है और धरणी भी शीतल नहीं कही जा सकती क्योंकि अंदर में भयंकर अग्नि भरी पड़ी है। तो उस धरणी की आत्मा कौन है जो उसके अंदर निवास करती है? सीता, शीतल, जो धरणी से ही निकलती है और धरणी में ही समा जाती है। जैसे हर मनुष्य के दो रूप हैं, एक आत्मा और एक शरीर, ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि की माता है उसमें एक शरीर धारणी है जड़ और दूसरी आत्मा, इसलिए दोनों को मिलाकर के महालक्ष्मी कही जाती है। क्या? महालक्ष्मी, महागौरी और महाकाली दोनों के संस्कार मिलकर एक होते हैं तब क्या कही जाती है? महालक्ष्मी कही जाती है। अब बताओ उस महालक्ष्मी में से कृष्ण वाली यह आत्मा को जन्म देने वाली माता कौन? महालक्ष्मी जगदम्बा है? जो लक्ष्मी कही जाती है वो लक्ष्मी ही यज्ञ के आदि में जब के लिए बताया कि मैं जब आता हूँ तो तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। कितनी मूर्तियाँ? तीन। कौन कौन सी? ब्रह्मा है उनमें एक, एक विष्णु की मूर्ति और एक शंकर की मूर्ति। उनमें जो ब्रह्मा वाली आत्मा है वो समझने वाली आत्मा है, चाहे वो दादा लेखराज ब्रह्मा हो और चाहे वो जगदम्बा हो, दोनों ही बड़े से बड़ी माँ है ना कि नहीं? तो दोनों में समानता होगी या नहीं है? दोनों बोल बोल करने वाली हैं या समझने वाली भी हैं? बोल बोल करने वाली। तो यज्ञ के आदि में वो माता बड़ बोली भी थी एक, जिसकी यादगार में उसकी मूर्ति में लंबी जीभ दिखाई जाती है। कहावत में भी कहते हैं, अरे भाई इससे ज्यादा मुंह न लगाओ, इसकी बड़ी लंबी जीभ है। एक माता वो थी यज्ञ के आदि में, और दूसरी माता वो थी जो बोलती कम थी लेकिन समझती ज्यादा थी। तो जब दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया गया प्रजापिता के द्वारा, तो प्रजापिता को वो साक्षात्कार किसने सुनाए? दादा लेखराज ब्रह्मा ने सुनाए या उनकी बड़ी बहन ने सुनाए या कोई और बड़बोली माता थी? तो बड़बोली माता ने हिम्मत की सुनाने की। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो जो हिम्मत करने वाली माता थी बोल बोल करने में, उसने साक्षात्कारों को मनुष्य सृष्टि के बीज प्रजापिता के सामने सुना दिया। जिसने सुना मुख से वो पहला ब्राह्मण हो गया, और जिसके मुख से सुना वो क्या हो गई? ब्रह्मा माता हो गई, बड़ी माँ। क्या ब्राह्मण कब बनता है? है ब्रह्मा के मुख से सुने तो पक्का ब्राह्मण। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? प्रजापिता पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो फिर पहला ब्राह्मण। जिस ब्राह्मण चोटी के लिए मुरली में बोला कि तुम बच्चे जब विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हो, सिर्फ चोटी मात्र ऊपर रहती है। क्या रहती है? चोटी मात्र ऊपर रहती है। अब बताओ दुनिया में कौन से पहाड़ की चोटी है जो बहुत ऊंची है? एवरेस्ट, पूर्वी सभ्यता का प्रतीक। वो एवरेस्ट चोटी जब महाविनाश होता है, सारी सृष्टि पर जलमयी हो जाती है, तो सब कुछ डूब जाता है, कौन सी चोटी बचती है? एवरेस्ट चोटी बचती है। जिस चोटी की भावना में कभी सात्विक भावना धारण करता है तब गीत गाता है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। प्रलय काल के जलमयी की बात बताई गई। एक ही बचता है जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है। दुनिया में भी देखा जाए, कोई परिवार के बच्चों से पूछा जाए कि तुमको किसने जन्म दिया, तो बच्चे क्या बोलेंगे? हमारी माता ने जन्म दिया। अरे माता के अंदर भी तुम कहां से आए? है माता अपने आप ही जन्म देती है या माता में भी बीज डोलने वाला कोई पिता है? है तो वो बीज पिता से आता है। इसी तरह इस मनुष्य सृष्टि का बीज वो प्रजापिता है जिसमें संपूर्ण स्टेज धारण करने पर सारी सृष्टि लीन हो जाती है। जो कहता है मत मना भव, मेरे मन में समा जा। मना मेरा मन जो कृष्ण वाली आत्मा है वो मेरे में पहले पहले समाती है, बिंदु बन करके, और उस बिंदु रूपी माता में सारी मनुष्य सृष्टि को समा जाना है। इसलिए वृक्ष के ऊपर जो मनुष्य सृष्टि का वृक्ष दिखाया उसमें ऊपर कौन है? शंकर बाप दिखाया गया है, नग्न अवस्था में, निराकारी स्टेज में। वो निराकारी स्टेज ही मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। जो गीता में लिखा है अव्यक्त मूर्तिना, उस श्लोक में आया है कि उस अव्यक्त मूर्ति से सारा संसार जन्म लेता है और सारा संसार प्रलय काल में उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है। जो संसार में विद्वान पंडित आचार्य मिसाल देते हैं, अरे हम सब आत्माएं पानी के बुलबुले हैं, बुदबुदे, जैसे सागर में ढेर सारे बुदबुदे पैदा होते हैं और वो बुदबुदे सागर में ही समा जाते हैं। वो मिसाल देते हैं जड़ सागर का, लेकिन है कहां कौन से सागर की बात? चैतन्य सागर की बात है। वो चैतन्य सागर जो धरणी रूपी माता को अपनी गोद में लेकर के चारों तरफ से बैठा हुआ, क्योंकि स्थूल सागर भी तीन हिस्सा जल में है और पृथ्वी एक चौथाई हिस्से में है, वो है चैतन्य ज्ञान सागर। और वो चैतन्य ज्ञान सागर से ही सारी नदियां निकलती हैं, परंतु विदेशी नदियां जो हैं वो पतित पावनी नहीं है। क्या? क्यों? क्यों नहीं है? भारत की नदियां पतित पावनी है। वो पतित पावनी नदियां भारत की नदियां, भारत रूपी ज्ञान सागर से निकलती हैं और उसी में समा जाती है। और जो ज्ञान सागर है वो अलग, और ज्ञान सूर्य अलग। जो ज्ञान सूर्य है वो सागर से, पृथ्वी से, नदियों से, पहाड़ों से अटैचमेंट रखता है या सदैव डिटैच है? और सागर अटैच होकर के रहता है, तो वो चैतन्य ज्ञान सागर है। उस चैतन्य ज्ञान सागर से पहले पहले वो धरणी रूपी माता जो पहली पहली रचना है जिसका नाम है प्रकृति, प्रकृष्ट कृति, कृति माने रचना, पांच तत्वों वाली रचना। बताओ माँ के पेट में पहले पांच तत्वों का पुतला तैयार होता है या पहले उसमें आत्मा आती है? क्या होता है? पुतला आता है। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? संगम युग से शुरू हुई। संगम युग में भगवान बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर जब आते हैं, तो जिस तन में मुकर रूप से प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा पहले पहले वो प्रकृति का निर्माण करते हैं नई सृष्टि में। पांच तत्वों रूपी प्रकृति जो चैतन्य प्रकृति है, वो सबसे पहले मैदान में आती है, परंतु जड़त्वमयी बुद्धि है। माना मुरली में बोला है, बाप के साथ लंबे समय तक रहने वाले बच्चे भी बाप को भूल जाते हैं। तो कैसी बुद्धि कहें है? जड़त्वमयी बुद्धि कहें। वो प्रकृति रूपी माता जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण पांच विकारों वाली माया के चंबे में बड़ी जल्दी आ जाती है। क्या माया? जब भगवान बाप के बीज रूप स्टेज धारण करने वाले योगी बच्चों से तंग आ जाती है, तो क्या करती है? स्थूल शरीर छोड़ देती है और सूक्ष्म शरीर धारण करके ज्यादा पावरफुल हो जाती है, ज्यादा बुद्धिमान हो जाती है, तीखी हो जाती है और एक युक्ति रचती है। क्या युक्ति रचती है? कि जो सबसे पावरफुल रचना है भगवान गॉडफादर की, उससे हाथ मिला लेती है। तो माया भले कमजोर हो जाती है, लेकिन पावरफुल से हाथ मिलाती है। इतना पावरफुल होती है कि उसकी गोद में खेलने वाले, जगदम्बा की गोद में खेलने वाले 500-700 करोड़ बच्चे उसके प्रभाव में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, जिनके ऊपर वो महाकाली रूपी धरणी राज करेगा खालसा। सिखों की इस बात को पूरा साबित कर देती। लेकिन बच्चों के ऊपर तो विजयी हो जाती है, बच्चों को तो प्रभावित करती है, लेकिन बाप को प्रभावित नहीं कर सकती। कितनी भी पावरफुल है, ये पावरफुल कैसे बनी है? प्रैक्टिकल में लंबे समय तक बाप का संग का रंग लिया, बाप के साथ गोपियों के रूप में गुप्त संबंध का पार्ट निभाया, तो संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। संग का रंग ऐसा लगता है, लंबे समय तक का संग का रंग कि सारी सृष्टि में सबसे जास्ती पावरफुल बन जाती है। लेकिन माता का रूप है या पिता का रूप है, करंट है बिजली का, उसमें प्लक होता है, एक प्लक होता है गड्ढे वाला, दूसरा प्लक होता है मेल, एक फीमेल, दोनों का मेल होता है तो ऊर्जा तैयार होती है, शक्ति तैयार होती है। ऐसे ही पिता है मेल और माता है फीमेल, तो जो फीमेल है उसमें मेल की ताकत आ जाती है संग के रंग से, इतनी ताकत आ जाती है कि सृष्टि के अंत में सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के ऊपर राज करेगी। पहले पहले ब्राह्मणों की दुनिया में राज करती है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी पहले बीज रूप आत्मा जो एडवांस पार्टी कही जाती है, रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं, उनके ऊपर राज करेगी कि दूसरों के ऊपर राज करेगी, वहां शुरुआत। पर सारी दुनिया कंट्रोल में आती है, जैसे यज्ञ के आदि में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो जाती है, ऐसे हुआ। फिर भी माता के भी दो रूप हैं, एक आत्मिक रूप समझदार और एक जड़त्वमयी शरीर का रूप बेसमझ। तो यज्ञ के आदि में कृष्ण वाली आत्मा को जन्म देने की शूटिंग किसने की होगी? है हाँ जी, बोल बोल करने वाली माता पूरा समझ नहीं पाती साक्षात्कारों की रहस्य को, और छोटी माता समझ जाती है और समझ करके ब्रह्मा और सरस्वती दादा लेखराज और ओमरादे वाली आत्माओं को क्लेरिफिकेशन देती है, माना उनकी आत्माओं में ये निश्चय बैठ जाता है कि नई दुनिया में हम राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। ये शूटिंग हो जाती है पहले पत्तों को जन्म देने की, तो वो लक्ष्मी नारायण का पद बन जाता है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त करने वाली बन जाती है। इसलिए बताया जो बहुत गुह्य ज्ञान है, गीता में भी लिखा है गुह्यात् गुह्यतरम् ज्ञानम्, डीप समझने की बातें हैं, तो ये बातें लिखत में कैसे समझावे? जो वो समझने वाले समझ जावे। इस सीढ़ी से पहले समझेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं अभी देखो, अभी कोई कहेंगे बाबा ये डीप बात त्रिमूर्ति के चित्र में जो अभी कई सप्ताह से समझाते आए हैं, वो बात इतने वर्षों पहले से क्यों नहीं बताई? त्रिमूर्ति की चित्र में बाप का चित्र कौन सा है जिसका परिचय देना है? तथा कथित ब्रह्मा कुमारियां 32 किरणों वाला चित्र ले जाती हैं, प्रदर्शनी में पहले रख देती है, मेले मलाखड़ों में कॉन्फ्रेंस में पहले रख देती है कि हम बाप का परिचय देते हैं। अरे जो खुद ही बाप को नहीं जानते वो दूसरों को बाप का परिचय कैसे देंगे। ब्रह्मा कुमारियां बाप को जानती हैं, हैं? कि कृष्ण प्रूपी जो पहला पत्ता है सृष्टि का उसको कौन से बाप ने जन्म दिया जानती हैं, तो दूसरों को कैसे परिचय देंगे। इधर एडवांस पार्टी वाले एक भी कहते हैं कि हम बाप का परिचय देते हैं। जिस बाप का परिचय देते हैं उस बाप के संपन्न रूप का परिचय देते हैं या अधूरे रूप का परिचय देते हैं, पुरुषार्थी रूप का परिचय देते हैं, है? पुरुषार्थी रूप जो है वो मनुष्य सृष्टि का सात्विक बीज है क्या, है? मनुष्य सृष्टि का सात्विक बीज है, नहीं हो सकता। तो वो मनुष्य सृष्टि का सात्विक बीज कौन है जिसकी खास भारतवर्ष में ढेर के ढेर मंदिर बनाकर मूर्ति बनाकर पूजा होती है और विदेशों में भी खुदाइयों में सबसे जास्ती मूर्तियां मिली, वो सार्वभौम मान्यता प्राप्त है वो मूर्ति। वो एडवांस पार्टी वाले भी कहते हैं पहले तो हमें नहीं बताया, शिकायत करते हैं बाबा ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताई, बताओ क्यों नहीं बताई, है? अरे जैसे पहले बोला था आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो जिन जिन बच्चों की आत्मा रूपी सुई की विकारों की जो कट है, देह अभिमान की खास उतरती गई और आत्मिक स्थिति की याद में टिकने लगे, स्टार की याद में टिकने लगे, उन बच्चों के लिए बोला कि संक्षेप्तर से डायरेक्ट बाप से सीखोगे। माना पहले डायरेक्ट बाप से किसी ने नहीं सीखा, ब्रह्मा से सीखा, ओमरादे से सीखा, दीदी दादी दादाओं से सीखा, लेकिन बाप को ब्रह्मा ने ही नहीं पहचाना, पहचाना नहीं पहचाना। तो जो ब्रह्मा कुमार कहलाने वाले बच्चे हैं संक्षेत्र के पहले, वो कैसे बाप से डायरेक्ट जानेंगे। ऐसे ही अभी ये बात साबित होती है क्या, जो त्रिमूर्ति में बाप का परिचय बच्चों को इतना क्लियर करके पहले नहीं समझाया और अभी अभी समझा रहे, अभी भी कोई कोई बच्चे समझ रहे हैं, कोई कोई नहीं समझ रहे। नहीं तो बताओ त्रिमूर्ति में बाप की मूर्ति कौन सी है, है? शंकर जी। अरे शंकर जी याद में बैठे हैं तो पुरुषार्थी हैं या संपूर्ण हैं? पुरुषार्थी को संपूर्ण कहेंगे, हैं? नहीं, वो तो याद में बैठे हैं। पुराने पुराने शिव के मंदिरों में भी बीच में शिवलिंग होता है और चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं। उन मूर्तियों के बीच में शंकर की मूर्ति भी होती है। तो बताओ शिव के मंदिर में शंकर मुखिया है या शिवलिंग की मूर्ति मुखिया है? शंकर तो मुखिया नहीं है, है? तो वो रूप कौन सा है जिसके लिए इतना बोला है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिसको नमन करने योग्य है वो त्रिमूर्ति में कौन है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। कौन सा है शिव बाबा त्रिमूर्ति में? कौन है शिव बाबा है? अभी भी नहीं समझा है? है? बिंदु रूप, बीज रूप, लिंग रूप, विष्णु रूप। विष्णु देवता है या ऊंची से ऊंची भगवंत है? वाह भाई वाह, विष्णु रचना है या जो विष्णु देवता है उसका रचयिता है? अरे रचना है, फिर रचना बड़ी या रचयिता बड़ा? तो रचयिता कौन? त्रिमूर्ति का चित्र इतने वर्ष हो गए, दूसरों को समझाते समझाते बहुतों का गला भर गया, और आज तक भी बाबा क्या कहना चाहते हैं मुरली में वो बाप को न समझा न दूसरों को समझा पाया, और अभी भी वही बात है त्रिमूर्ति की। इतने सप्ताह से समझाते चले आ रहे हैं, अभी भी नहीं बता पा रहे कि त्रिमूर्ति की चित्र में वो मूर्ति कौन सी है जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, जिससे ऊंचा कोई भी नहीं होता इस सृष्टि में। शिव बाबा कौन सी मूर्ति है? शिव शंकर को? अरे शिव उसमें प्रवेश है क्योंकि तीसरा नेत्र दिखाते हैं शंकर को, बाकी याद में है या नहीं है? तो जो याद में है, याद का सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा है, वो संपूर्ण पास है या नापास है? नापास है, तो वो कैसे ऊंची से ऊंचा भगवंत हो गया? ओ बच्चे ने क्या बोला है? निराकार क्या? हाँ ऊपर का क्या है? ये ऐसे क्यों बोलते? ऊपर में जो ज्योति बिंदु दिखाते हैं, लिंग नहीं दिखाते,
दिखाते
निराकार निराकार क्यों चिल्ला रहे
हो?
अरे लिंग नहीं दिखाया, तो ये क्यों कहते हो निराकार? ये
लिंग दिखाया।
अरे प्रवृत्ति से नई दुनिया बनती है, साकार और निराकार दोनों की प्रवृत्ति चाहिए, लेकिन वो साकार और निराकार दोनों संपन्न रूप चाहिए, 100% सात्विक चाहिए। निराकार आत्मा भी 100% सात्विक, योग लगाते लगाते, और वो शरीर रूपी साकार बड़ा रूप जिसमें हाथ पांव नाक कान नहीं है, वो लिंग रूप भी एकदम 100% सात्विक। लेकिन उन बीके वालों से पूछो,
पता नहीं सका।
उन बीके वालों से पूछो कि जो गुण होते हैं वो निर्गुण निराकार में होते हैं या साकार में होते हैं? वो तो निर्गुण है, न उसमें गुण है न उसमें अवगुण है, वो गुण अवगुणों से रहित है, गुणातीत है, गुणों से परे है, अवगुण भी नहीं। जिसमें गुण होंगे उसमें अवगुण भी होंगे, तो उसमें गुण भी नहीं है अवगुण भी नहीं है, वो निर्गुण है। और उस निर्गुण के जो बच्चे हैं वो भी कैसे होंगे? निर्गुण होंगे। एक निर्गुण बालकों की संस्था का मिसाल भी बाबा ने दिया, क्या वो निर्गुण बालक कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्या कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परो, आपे ही हमारे ऊपर तरस करो, जो हमारे में गुण आ जाएं, तो बताओ ये रुद्रमाला के जो मणके हैं जिनको राम की सेना बंदर संप्रदाय बता दिया, उन बंदरों में कोई गुण होता है? होता है, है? उन जानवर बंदरों में कोई गुण नहीं होता, अगर गुण होता भी है तो तुम आत्मा रूपी जो चैतन्य आत्मा है दुनिया वालों के संग के रंग में आकर के बहुत बड़े बाप के बच्चे होते हुए भी संग के रंग में आकर के बहुत बड़े दुर्गुण वाले बन जाते हो। वो बड़े बाप का बच्चा होता है, बड़े राजा का बच्चा हो और कुसंग में आ जाए, और प्रजावर्ग के भी बच्चे हों वो भी कुसंग में आ जाएं, ज्यादा कौन बिगड़ेगा? तो तुम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो, आत्मारूपी बच्चे, इतने ऊंचे बच्चे तो उनमें दुनिया के मुकाबले सबसे जास्ती ताकत होगी या नहीं होगी? हैं? अच्छे से अच्छा कर्म करने की भी ताकत और बुरे से बुरा कर्म करने की भी ताकत। इसलिए मुरली में बोला बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, कैसे बड़े से बड़े, अच्छे देखने हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े राक्षस देखना हो, पाप आत्माएं देखना हो तो यहाँ देखो, दुनिया के मुकाबले। तो देखो तुम ऐसे बंदर बुद्धि बन पड़े जो कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बे अहंकार में आकर के एक दूसरे से बात करते समय लड़ाई लड़ते समय भले बड़ा समझे अपने को, लेकिन अंदर से तो समझते हैं कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं। सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? है?
<स्थाथ। coughs>
और सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? पवित्रता की शक्ति। तो जो बड़े से बड़ी शक्ति है पवित्रता की पावर, वो किससे मिलती है? बड़े से बड़े पवित्रता की पावर, बड़े से बड़ी पावर किससे मिलती है? अरे अरे, अच्छा पवित्रता की पावर किससे मिलती है? द्वापर युग से जो अपवित्रता की पावर आने लगी वो किससे मिली? धर्म पिताओं से, देहधारी धर्म गुरुओं से, अनेकों से, अनेकों के संग के रंग में आए, विचार में आए तो अपवित्रता आई। इसलिए बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, नहीं तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। अनेकों से सुना तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा, फिर व्यभिचारी धर्मों में जाना पड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? एक से सुनना चाहिए। कौन एक से? जिसको हम समझ लें कि यही दुनिया में ऊंचे से ऊंचा है। ऊंचे से ऊंचा होता ही है विश्व का बादशाह। क्या? जो विश्व का बादशाह है वो इस दुनिया में सबसे ऊंचा है, और जो सबसे ऊंचा है वो ही हीरो पार्टधारी, वो ही हीरो पार्टधारी सोमनाथ के मंदिर में हीरे के रूप में दिखाया गया है। लेकिन वो हीरा भी पत्थर ही था। हीरा पत्थर होता है कि नहीं? और शिव, शिव तो पत्थर नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई आत्मा है जो पुरुषार्थी जीवन में शुरुआत में पत्थर बुद्धि थी। क्या? आदि से लेकर के अंत तक कोई ऐसी बात है जिसको लेकर पत्थर बुद्धि रहती है? क्या? पत्थर बुद्धि कलयुग में, सतयुग में स्वर्णलिंग, त्रेता में रजत लिंग, द्वापर में ताम्र लिंग, और कलयुग में लौह लिंग या पत्थर लिंग। वो ही पत्थर लिंग ऐसी आत्मा, पत्थर बुद्धि आत्मा शिव बाप के ज्ञान से, ज्ञान जल से, जैसे कोई कोई नदियां हैं उन नदियों में पहाड़ से काले पत्थर नदी के जल में रगड़ते 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 समंदर में पहुंचते हैं तो गोल शालिग्राम बन जाते हैं। बन जाते हैं कि नहीं? ऐसे ही कोई आत्मा है मनुष्य सृष्टि में जो सारे 63 जन्मों में और सारे संगम युग में संघर्ष करते 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 अंत में गोल शालिग्राम बन जाती है, पत्थर का लिंग बन जाती है। और वो आत्मा आखिरी स्टेज में जो बोला है कि बैल पर सवारी कैसे करते हैं, हाई जंप लगाते हैं तो सवार हो जाते हैं। तो ऐसे ही है पुरुषार्थी जीवन में बैल शंकर के ऊपर सवार रहता है। और जब संपन्न स्टेज होती है हाई जंप लगाने की, तो बैल पर शंकर सवार हो जाता है। शिव के मंदिर में बैल भी दिखाते हैं ना, उसका मुख किस तरफ है? नाली की तरफ है। वो बुद्धि उसकी पुरुषार्थी जीवन में शरीर छोड़ने के बावजूद भी बुद्धि कहाँ रहती है? नाली की तरफ रहती है। वो ही बैल जिसमें बैलबाजी भरी हुई है, वो ही शंकर के गले में वासुकी नाग के रूप में भी दिखाया हुआ है। वसु का पुत्र वासुकी, क्या वसु माने धन संपत्ति, वेद की धन संपत्ति क्या है? ज्ञान। वो हुआ वसु, और उसका बच्चा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा नारायण वसु, और उसका बच्चा कृष्ण, वो हुआ वासुदेव। वसु का बच्चा वासुदेव। ऐसे ही नागों के कुल में जो नाग काम विकार में बहुत विकारी होते हैं, उस कुल में जो वासुकी नाग है वो सब वसु का पुत्र है। किसका पुत्र? वसु का पुत्र। जैसे कृष्ण को वसुदेव का पुत्र वासुदेव दिखाया, कृष्ण का नाम भक्ति मार्ग में क्या है? कृष्ण का नाम भक्ति मार्ग में क्या है? वासुदेव। किसका बच्चा? वसुदेव का बच्चा। वसुदेव कौन से कुल का था? यादव कुल का था। शंकर को भी कौन से कुल का बताया? यादव कुल का बताया। यादव कुल का जो बच्चा है वो भी कौन से कुल का हुआ? यादव कुल का हुआ। तो वो जो नाग दिखाते हैं उसने गले से पकड़ रखा है। कहां से? गले से पकड़ रखा है। जैसे बबर शेर होता है ना, कोई भी जानवर को पकड़ेगा चाहे वो टाइगर ही क्यों न हो, कहां से पकड़ता है? गले से पकड़ता है। तो गले से पकड़ रखा है, उसे वासुकी कहो। नागों में सबसे पावरफुल कहो, जो नाग बहुत विकारी होते हैं काम विकार के, अथवा बैल कहो, बैलबाजी करने वाला, वो बैल, वो नाग, वो बड़े से बड़ा बंदर भी है जो रामायण में किस रूप में दिखाया गया है? हनुमान के रूप में दिखाया गया। सबसे बड़ा सहयोगी कौन बना? हनुमान बना। तो ये बात अभी की है, संगम युग की बात है, कि वो कृष्ण बच्चा जिसके लिए सारी पढ़ाई चल रही है सुप्रीम टीचर के द्वारा, वो बच्चा उसकी बुद्धि में अभी बैठा हुआ है कि मैं गीता का भगवान हूँ। क्या हूँ? गीता का भगवान हूँ। मैं भगवान हूँ तो मेरे संग के रंग से ये दुनिया पतित से पावन बनेगी। इसलिए वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जिसमें भी खास प्रवेश करके पार्ट बजाती है, चंद्रमा वाली आत्मा, उसके अंदर वो बैलबाजी जरूर करती है। वो वासुकी नाग का पार्ट जरूर बजाएगी, नहीं तो राम की आत्मा के लिए तो गायन है। क्या क्या गायन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कैसी मर्यादा? जो भी पुरुष हैं, आत्माएं हैं, उनमें उत्तम ते उत्तम नारायण वाली आत्मा की मर्यादा है। किसको याद करती है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। शिव बाबा वो नहीं जो साकार और निराकार का मेल। इसलिए मुरली में बोला, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आ गई। औरों की बात नहीं, औरों को बाबा कहने से साकार याद आवेगा ज्यादा, और तेरे को बिंदी याद आ गई। तो बोला, बाबा ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि त्रिमूर्ति में ये जो शिवलिंग है वो ही बाप का संपन्न रूप है। कौन से बाप का? बेहद के दो बाप है, आत्मा का बाप वो भी बेहद का, और मनुष्यों का बाप वो भी बेहद। तो कौन से बाप की बात है? मूर्ति के चित्र में तीनों मूर्तियों के ऊपर जो चौथी मूर्ति रखी हुई है शिवलिंग, वो किसकी यादगार है? संपन्न हुए बाप की यादगार। जिसका पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है, वो संपन्न स्टेज में उसकी शरीर रूपी नैया भी संपन्न हो जाती है, और उसमें बैठाइया आत्मा भी संपन्न हो जाती है। इसलिए मुरली में कहा, तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक ही बाप है। वो तुम्हारी शरीर रूपी नैया को भी इसे विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, इससे पार ले जा करके कहाँ ले जाएगा, कहाँ पहुँचाएगा? है क्षीर सागर में पहुँचा देगा। और जितने भी देहधारी धर्मगुरु हुए, धर्म पिताएं हुए, वो सब डुबोने वाले हैं। क्या? चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी धर्म पिता हो, कोई भी देहधारी हो, कोई कहे क्या प्रजापिता देहधारी नहीं है? हाँ, प्रजापिता नाम ही है, 500-700 करोड़ प्रजा का पिता। 500-700 करोड़ जो प्रजा है वो पतित है या पावन है? पतित है। पतितों का बाप का नाम प्रजापिता है, लेकिन वो पावन बनने का पुरुषार्थी है या नहीं है? हैं? है। तो पावन बनने के पुरुषार्थ में जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी शक्ति है क्षत्रियों की, वो उसे मिली हुई है, पूर्व जन्म के पुरुषार्थ से ही मिली हुई है। ब्राह्मणों की दुनिया में पूर्व जन्म का पुरुषार्थ, यज्ञ के आदि का पुरुषार्थ था या नहीं था? था। उसमें राम के लिए क्या बोला? राम फेल हो गया। समझने वालों ने समझा फाइनल में फेल हो गया। अरे अभी फाइनल पेपर हुआ भी है तो छोटे मोटे पेपर में फेल हुआ या फाइनल पेपर में फेल हुआ? चलो फेल हो गया। तो जो फेल हो गया उसको जो पास होकर के आगे बढ़ गए वो फेल हो गया। काहे में फेल हो गया? कौन से मुख्य सब्जेक्ट में फेल हो गया? हाँ, याद के एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। कौन सी याद? जो शिव के मंदिर में लिंग रूप धारण करने वाले की याद दिखाई है के एंटी सेक्स के साथ भी रहे, इंद्रियों से सन्यासियों की तरह दूरबाज खुशबाज नहीं, लेकिन बुद्धियोग से उपराम रहे, उस याद में फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था षष्ठी चक्र का, 84 जन्मों का। और अभी तो बाप कहते हैं मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, मेरे पास जो भी ज्ञान था तीनों कालों का, इस षष्ठी का, आत्मा का, परमात्मा का, परमपिता का, जो भी ज्ञान था सारा ज्ञान तुम बच्चों को दे दिया। तो अभी तो ज्ञान में संपन्नता आ गई ना, तो ज्ञान में संपन्नता आ जाए, जो पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय पढ़ाई का, उसको कोई फेल कर सकता है? नहीं कर सकता। औरों में वो ज्ञान नंबरवार है, और जो परिवार का मुखिया बाप होता है उसके अंदर परिवार के सभी भांतियों का ज्ञान पूरा होता है या अधूरा होता है? पूरा होता है। तो वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। यज्ञ के आदि में वो भले फेल हो गया, लेकिन जो बच्चा ऐसे कोई कक्षा होती है, कक्षा में कोई बच्चा फेल हो गया तो नीचे की कक्षा में पड़ा रहेगा, दूसरे बच्चे आगे चलेंगे, उन बच्चों के संगठन में उसको बैठाया नहीं जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, जो ब्राह्मण परिवार था उस परिवार से उसको कोई सहयोग मिलने वाला नहीं है। जो बाप है सुप्रीम सोल, गॉड फादर, निराकार, वो उस बच्चे को ज्ञान के बाण और पुरुषार्थ रूपी धनुष दे देता है, बुद्धि रूपी तर्कस दे देता है, जाओ उस दुनिया में शिकार करो जानवरों का, जानवर बुद्धियों का, और क्या करो, मारो और खाओ। वो जन्म लेता है एकलव्य का, एक जन्म एकलव्य माने एक को लव करने वाला। अरे देखने में तो आता है एक को लव नहीं करता है, ये तो 16,000 को करता है, शास्त्रों में प्रसिद्ध हो गया। अरे शास्त्र वाले तो जानते ही नहीं, वो तो समझते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, उन्होंने नारायण और कृष्ण सतयुग के आदि राजा को समझ लिया। वास्तव में संगमयुगी कृष्ण की बात है या सतयुग के कृष्ण की बात है? संगमयुगी कृष्ण की बात है। वो संगमयुगी जो कृष्ण है वो शिव बाप का बच्चा है, वो ही राम है, वो ही कृष्ण है, वो ही राम में कृष्ण की आत्मा प्रवेश करती है, वो ही शिव है। एक ही शरीर में तीनों आत्माएं पार्ट बजाती हैं। विद्वान आचार्यों ने इस लोक बनाए दिए क्या अच्युतम, आ माने नहीं, च्युतम माने नीचे, जो नीचे नगर माने जो अमोघ वीर्य हो जाए, अच्युतम केशवम का माने ब्रह्म, ईश माने स्वामी, ब्रह्मा के ऊपर भी कंट्रोल करने वाला। जो मुरली में बोला शिव बाप ने, ऐसे ऐसे बच्चे थे यज्ञ के आज में जो मम्मा बाबा को भी कंट्रोल करते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, डायरेक्शन देते थे, ऐसे करो ऐसे करो। तो देखो जो आज में वो अंत में भी साबित होंगे बड़े, तो वो राम वाली आत्मा अपने बाप से कौन सा वर्षा ले लेती है? जो बड़ा बच्चा होता है बाप से अलग हो जाता है खुदान खास्ता, तो बाप उसे डाडे की प्रॉपर्टी जरूर देता है। क्या प्रॉपर्टी दी? बाण ले जाओ, पुरुषार्थ रूपी धनुष, क्या जिसे चाप भी कहते हैं, शंकर चाप जहाज, जई चढ़ी उतर है पार नर, बूढ़ सकल संसार, गुरु नानक ने अपने ऊपर ले लिया नानक चाप जहाज। और कबीर दास रहमदीस ने अपने ऊपर ले लिया चदरिया भीनी भीनी रे, चदरिया माने शरीर रूपी चदरिया, कैसी भीनी? भीनी भीनी रे सो चादर नर सुर मुनि ओढ़ी। किसने किसने? सुर देवताओं ने ओढ़ी, मुनियों ने ओढ़ी, मनुष्यों ने ओढ़ी, ओढ़ी के मैली की नी चदरिया, वो शरीर रूपी चद्दर गंदी कर दी। क्या कैसी गंदी कर दी? कलयुग में आज किसी के पेट इतने बड़े, किसी का चेहरा ऐसा ऐसा थलुन थलुन, एक भी चेहरा लक्ष्मी नारायण जैसा शरीर नहीं। ओढ़ के मैली की नी चदरिया सो चादर, सो चादर उन्होंने अपने ऊपर रख लिया ना, सो चादर कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी नी चदरिया। उस चदरिया में कोई कोई अंतर नहीं आया, माना कन्याओं की चदरिया पतली कमर वाली ली तो पतली कमर वाली ही रही, और मनुष्य लेते हैं तो कन्या क्या बन जाती है? मोटी कमर वाली माता बनाए देते हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा कर देते। अब ये है भगवान की बात, और ये देखो देहधारी धर्मगुरुओं ने अपने ऊपर रख ली। ये बात अभी संगम युग की है, भगवान बाप इस समय आकर के कहते हैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक ही बाप है। कहाँ ले जाएगा? खीर सागर में ले जाएगा। अब बताओ ये कौन सा बाप है जो खीर सागर में ले जाएगा? खुद जाता है तभी तो ले जाएगा, खुद खीर सागर में नहीं जाता होगा तो बच्चों को कहां से ले जाएगा? ये शिव बाप की बात है, जो शांति धाम में वापस चला जाता है, शांति धाम को क्षीर सागर कहेंगे या शांति धाम कहेंगे? शांति धाम कहेंगे। तो क्षीर सागर में ले जाने वाला बाप कौन है? है जो नरको नारायण बनाता है। डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा। ऐसे नहीं है कि खुद हो नहीं और दूसरों को बना दे। तो खुद जीवन मुक्त होगा तो दूसरों को, बच्चों को जीवन मुक्त बनाएगा। खुद जीवन मुक्त नहीं होगा तो बच्चों को जीवन मुक्त नहीं बना सकता। इसलिए बोला कि राजाओं का राजा, तो ये देखो राजे पूज्य, कौन से राजे पूज्य सो पुजारी है? सतयुग के जो भी राजाए हैं
पूज्य तो बनते हैं, है? नारायण बनेंगे ना, देवता बनेंगे या नहीं बनेंगे? पूज्य तो बनते हैं, पुजारी भी बनते हैं। और जब पुजारी बनते हैं तो माथा टेकते हैं, सबको माथा टेकते हैं, को माथा टेकते हैं वो किसी देहधारी को माथा नहीं टेकता, न सतयुग में न त्रेता में न द्वापर में न कलयुग में, लेकिन उसको सारी दुनिया माथा टेकती है। वो कौन सी मूर्ति है? है? अरे फिर भूल गए, शिवलिंग, शिवलिंग में साकारी भी है और निराकारी भी है, वही ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। जो भक्ति मार्ग में सात्विक स्टेज में द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर में राजा विक्रमादित्य के द्वारा जिसकी पूजा हुई थी, राजा है तो भिखारी होते हैं द्वापर युग में, उस भिखारी बुद्धि राजा को बुद्धि किसने दी? है बाप ने बुद्धि, वो बाप पूज्य तो है लेकिन पुजारी
नहीं,
पुजारी नहीं। तो ये राज सबको बताना चाहिए कि कौन से राजा हैं जो मत्था टेकते हैं। भारत में देवी देवता धर्म वाले थे तो पूज्य थे, और वही राजा रानी जब पुजारी बनते हैं तो उनकी प्रभावित होने वाली प्रजा भी पुजारी बन जाती है। तो बस कोई पुजारी प्रजा भी और पुजारी राजा भी, वो दोनों उनको माथा टेकते हैं, उनको उनको जो किसी को माथा नहीं टेकता। कौन है वो? हिस्ट्री में भी है, अकबर भारत का सम्राट, सारे भारत का। उसने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी, लाखों की सेना लेकर के आक्रमण किए, फिर रिजल्ट क्या हुआ? माथा झुका पाया? नहीं झुका पाया। महाराणा प्रताप के सामने क्या हुआ है? रिजल्ट क्या आया? सदैव जीत में रहे या हार में रहे? जीत में। इसलिए बाबा वरदान देते हैं बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है।